खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवदव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सतगुरुदेव जी के चरणों में बैठ करके हम लोग हर रोज उन्हीं के मार्ग दर्शन अनुसार कुछ ना कुछ अपने आप को समझने का चिंतन करते हैं। अपने आप को समझने का, संसार को तो समझते ही हैं, जब से हम पैदा हुए हैं संसार को जानने की कोशिश तो करते ही हैं हर रोज़। और संसार का हमने इकट्ठा भी बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ हमने अपने अंदर इकट्ठा करके रखा है। संसार की वस्तुएं इतनी भरी हुई है कि उससे हमारी तृप्ति नहीं हो पा रही। वस्तुएं तो बहुत इकट्ठी की है, व्यवहार में भी इकट्ठी की है, अंदर तो पूरा संसार ही बैठा हुआ है। जो नई व्यवहार में हमारे पास आई वो भी अंदर है हमारे, कनाडा अमेरिका जो कुछ भी ब्रह्मांड की वस्तुएं है ना, स्वर्ग नरक जितना भी है सब हमने अंदर इकट्ठा कर रखा है। भले प्राप्ति उसकी हमारे को नहीं हो रही व्यवहार में, लेकिन अंदर तो हमने उसको संभाल रखा है। लेकिन अपने आप को जानने की चेष्टा बहुत लोग कम करते हैं। मनुष्य नाम सहस्रेशु कश्चित् जतति सिद्धये, जत्तामपि सिद्धानां कश्चन माम व्यक्ति तत्पतः। ये कहते हैं भगवान कृष्ण, हजारों में से कोई एक ऐसे होते हैं जो यत्न करते हैं सिद्धि के लिए, मोक्ष के लिए। यत्तामपि सिद्धानां, यत्न करने वाले जो है ना उसमें से सभी थोड़ी प्राप्त हो जाते हैं। कश्चन माम व्यक्ति तत्पतः, कश्चन कहते हैं कोई कोई एक, कोटन में नानक को नारायण जह जीत, कोई एक है जो मेरे को तत्व से जानता है। तो मेरे को जानने का मतलब क्या होता है, केवल भगवान को जानने से नहीं कि उनको जानता है तो अपने आप को अलग मान के थोड़ी जानता है। यदि उनको जानेंगे अपने आप को अलग मान के तब भी द्वैत रहेगा। कहते हैं महात्मा लोग कि जैसे कहते हैं भगवान कि मेरे को तत्व से कोई कोई जानता है, तो तत्व का दर्शन तो भगवान ने अर्जुन को कराया है, विराट रूप में कराया है ना दर्शन कि मैं सब में किस प्रकार व्यापक रहता हूँ। तो कहते हैं कि अर्जुन को कहते महाराज भगवान कृष्ण कि तेरे को मैं दिव्य चक्षु देता हूँ जिनके द्वारा तू मेरे को देख। महात्मा लोग कहते हैं कि अर्जुन के तो सामने खड़े हैं कृष्ण भगवान, देखना किसको है, तब भी उसको कहते हैं कि मेरे को देख। सामने जो कृष्ण खड़े हैं वो उनको देख तो रहा है, तब भी वो कहते हैं चक्षुओं से तुम मेरे को नहीं देख सकते। तो वहीं से तो पूरा वेदांत सिद्ध हो जाता है। वो कहते हैं जो भगवान सामने खड़े हैं वो भगवान का क्या स्वरूप है, पांच तत्वों का शरीर है, उसके साथ नहीं जोड़ रहे उसको कि मेरे को देख। उनके साथ तो 24 घंटे रहता है अर्जुन, जानता है, सखा है उनका, वो शरीर क्या सखा है वो जो तत्व से जानता है। कहते मेरे को कोई कोई, तो तत्व से जानने की बात के लिए वो कहते हैं कि इन चक्षुओं से जो चर्म चक्षु है ना इनसे तुम हमारे को नहीं देख सकते, क्योंकि जो हमारा शरीर है ना स्थूल शरीर वो इन चक्षुओं का विषय है। ये चक्षु जो हैं केवल स्थूल पदार्थों को देख सकते हैं, तो जो हमारा तत्व स्वरूप है वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, उसको सूक्ष्म बुद्धि से जाना जाता है, विषयाकार बुद्धि से भी वो जाना नहीं जाता। उसको जानने की बात करते हैं कि मेरे को यदि तुम जानना हो तो दिव्य चक्षु देता हूँ तेरे को। इसलिए दिव्य चक्षु दे करके उसको दिखाया था अपना स्वरूप, भाव उसको अपने जो उसका अहम है शरीर के साथ इंद्रियों के साथ उससे हट करके उसको ऐसी दृष्टि दी भगवान ने, जिससे उन्हें विराट रूप में भगवान को व्याप्त देखा सब जगह। भगवान को देखने का तात्पर्य यही है कि अपने आप को देखना, भगवान से अलग कोई अपना आप नहीं देखा जाता। यदि हम कहेंगे कि सब जगह परमात्मा है, मैं देखता हूँ परमात्मा को, तो फिर भी तो द्वैत हो गई, परमात्मा अलग हुआ हम अलग हुए। कि सब जगह मैं व्यापक रूप में परमात्मा को देखता हूँ तो देखने वाला अलग रहेगा, दृश्य अलग रहेगा। जब देखते हैं तो जिसको देखते हैं वो भी दृश्य में आ जाएगा। इसलिए दृश्य अभी यही तो बात हमारी यहाँ चल रही है, सकल दृश्य सो अध्यास छोड़ना, संपूर्ण जो दृश्य है वह अध्यास है। तो जिसको भी हम दृश्य कोटि में ले आएंगे वो तो रहेगा नहीं। दृश्य अनित्य होता है, कार्य होता है, परिच्छिन्न होता है, वो कभी रहता नहीं है। केवल जो दृष्टा और दृश्य है ना, ये भी व्यवहार मात्र है। आगे जाकर के श्रुति भगवती कहती है कि दृष्टा अदृष्टा हो जाता है, माता अमाता हो जाती है, पिता अपिता हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता। श्रोता ममता विज्ञातारा कुछ भी नहीं रहता। यह भी केवल हमारे को समझने की समझाने की प्रक्रिया के कारण हम लोग वाणी की कल्पना करते हैं। वाचा रमणम विकारो नाम धेयम तस्य मृतका एव सत्यम, ये कहते हैं कि ये केवल वाचा का वाणी का जो है ना विकार है पूरा संसार, बिना वाणी से कुछ भी नहीं है। जब वाणी रुक जाती है तो संसार खत्म हो जाता है, क्या रहता है, क्या किसको किसी को बोल के क्या दिखाएंगे, ये है ये है ये है, केवल हमारी वाणी का विकार है ना। या तो यह है या वह है, दो ही तो हैं, यह है वह है, ये केवल वाणी की दोनों बातें हैं ना, यह है वह है, इन दोनों चीजों के वाच्य पूरा संसार है, यह का वह का। तो यह और वह दोनों के बीच में हम लोग हैं। दोनों को विचार करके देखेंगे तो ना यह है ना वह है। जैसे उसको सपना आया था ना जनक को, तो क्या पूछा उन्होंने, यही पूछा था कि यह सत्य है कि वह सत्य है। यह और वह दो ही बातें कही थी। तो क्या कहा था अष्टावक्र जी ने कि ना यह सत्य है ना वो सत्य है, यह और वह, इसका मतलब दोनों ही सत्य नहीं है। तो सत्य क्या हुआ, मैं सत्य चेतनानंद हूँ। पूरा संसार यह और वह दोनों शब्दों का वाच्य है। यह और वह दोनों को अष्टवक्र जी ने कहा कि यह दोनों सत्य नहीं है, ना यह सत्य है ना वो सत्य है। तो क्या बचा फिर, अपना आप ही तो बचा। हम लोग जितना कुछ मतलब जानने की कोशिश करते हैं, या तो यह को जानना चाहते हैं या वह को जानना चाहते हैं, पूरी हमारी जिंदगी इसी में बीत जाती है, यह वह करते करते। और मैं की तरफ तो आते ही नहीं है। जब मैं की तरफ आएंगे तो ना यह रहेगा ना वह रहेगा, केवल मैं ही रह जाएगा। नमस्कार जी, जय हो। तो मैं को जानने के लिए तो है वो यथार्थ मैं हमारा जो है, उसको हम समझेंगे प्रक्रिया से। हमारा षटातरंग जो चल रहा है वहाँ हम चल रहे थे कि रजतादिवत दृश्य ज मृषा सुगति कादिवत ब्रह्म अमृषा। ये कहते हैं कि रजतादिवत, रजतादि जैसे रजत है, भोटल है, अब कागज है, ये जैसे मृषा मिथ्या है ना, तो इसमें से सत्य क्या है जो इसका अधिष्ठान है। चांदी जिसमें भासती है सीपी वह सत्य है, सर्प जिसमें भासता रस्सी में वह सत्य है, जैसे स्थाणु में पुरुष भासता है तो स्थाणु सत्य है, मृग तृष्णा का जो जल है ना वो जहाँ भासता है वो जल तो है नहीं है, जिसमें भासता ना मरुस्थल में रेता में वो सत्य है। उसी प्रकार ये कहते हैं कि रजतादिवत दृश्य ज मृषा सुगति का आदिवत ब्रह्म अमृषा, जैसे रज्जु सत्य है, सीपी सत्य है, स्थाणु सत्य, उसी प्रकार ये ब्रह्म जो अधिष्ठान है ना प्रपंच का, वह सत्य है, प्रपंच सत्य नहीं है। जैसे वो चीजें सत्य नहीं जिसमें वो भासती हैं वो सत्य है, उसी प्रकार जो ब्रह्म है वो सत्य है, ब्रह्म में जितना दिख रहा है ना प्रपंच वो सत्य नहीं है। फिर कहते सत्य नहीं तो इसका थोड़ा सा विस्तार से हमारे को बताओ, अभी इतना कहने से भी पता नहीं चलता। तो और आगे बताते हैं कि व्यभिचारी ही मिथ्यो रजतादि ज्यों, जिस प्रकार रजत है, भोडल है, कागज है ना, ये परस्पर क्या है, व्यभिचार है इनका। व्यभिचार का अर्थ होता कि भेद है। जब सीपी में चांदी भासती है ना, उस समय अभक नहीं भासता, कागज नहीं भासता। जिस समय कागज आपको दिखेगा सीपी में तो चांदी नहीं दिखेगी, अभ्रक नहीं दिखेगा। एक समय में एक ही चीज दिखती है ना, तो दूसरी वहां होती होनी चाहिए थी ना। जब दिखती है तो, जब चांदी आपको दिख रही है तो कागज भी वहां होना चाहिए, यदि वो सत्य होता तो अभ्रक भी दिखना चाहिए, लेकिन नहीं दिखता। रज्जू में जिस समय सर्प दिखता है ना, सर्प रज्जू में किसी को सर्प दिखता है, किसी को द्रार दिखती है, जो पृथ्वी में द्रार पड़ जाती है ना, फाड़ जाती पृथ्वी, किसी को ऐसा लगता है, और किसी को दंड लगता है पड़ा हुआ टेढ़ा मेढ़ा। तो एक समय में जब सर्प भासता तो दूसरी चीजें कुछ नहीं भासती, यदि वो सत्य होती तो वहां होनी चाहिए थी। सीपी में एक समय एक ही चीज भासती है, तो इसका मतलब है सीपी में ये चीजें भासती हुई भी एक दूसरे के साथ इनका भेद है। जब एक रहती है तो दूसरी नहीं रहती। इसी प्रकार ये कहते हैं कि व्यभिचार है इनका। व्यभिचार का तो था कि अपने आश्रय को छोड़ करके रहना, जहां हमारा आसरा है उसको छोड़ के हम दूसरी जगह रहते हैं, तो हमारा व्यभिचार मतलब भेद है। इनका परस्पर भेद है, किसका, कागज का, चांदी का, अभ्रक का, परस्पर भेद है। और सीपी के साथ भी भेद है, आपस में भी इनका भेद है, एक रहती है तो दूसरी नहीं रहती। तो सीपी के साथ भी इनके इसी प्रकार व्यभिचार है। सीपी में एक समय में एक ही भासती है, तीनों नहीं इकट्ठी भासती, और तीनों रहती नहीं है इकट्ठी, एक रहती है तो दूसरी नहीं रहती। कहते हैं कि व्यभिचार ही मिथो रजतादि ज्यों, इन्हीं की मिथो व्यावृत्ति, इनके आपस में भी भेद है, इनका सीपी के साथ अधिष्ठान के साथ भी भेद है। तो इसमें जैसे इनका भेद ना, उसी प्रकार जो जागृत अवस्था है, स्वप्ना अवस्था है और सुषुप्ति अवस्था है, ये तीनों जो है ना इनका परस्पर भेद है। जिस समय जागृत है उस समय स्वप्न नहीं है, सुषुप्ति नहीं है, तीनों नहीं ना रहती इकट्ठी। जिस समय स्वप्न है उस समय जागृत नहीं है, सुषुप्ति नहीं है। जब सुषुप्ति होती है तो उस समय जागृत नहीं है, स्वप्न नहीं है। समझ रहे हैं कुछ के नहीं, दिमाग में बैठ रहा कि नहीं भाव। जो तीन अवस्था है उसमें से एक समय में एक ही भासती है, दूसरी नहीं। भासने का अर्थ था दिखना, प्रतीत होना, ज्ञान होना उसका। जागृत का ज्ञान होता तो स्वप्न का नहीं होता, सुषुप्ति का नहीं होता। जैसे वो तीन चीजें इकट्ठी नहीं होती ना, चांदी, कागज और अभ्रक, उसी प्रकार जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तीनों का परस्पर कहते एक दूसरे के साथ भेद है। एक रहती है तो दूसरी नहीं रहती, एक रहेगी तो दो नहीं रहेगी उसमें से। और ब्रह्म कैसा है, ब्रह्म तो है, ब्रह्म लो आत्मा। हम लोग जब जागृत है तो उसको भी जानते हैं, तो स्वप्न में जाकर के जब जागृत का अभाव हो जाता है, सुषुप्ति का भी अभाव होता, दोनों के अभाव को भी हम जानते हैं। जब सुषुप्ति में चले जाते हैं तो वहां जागृत नहीं है, स्वप्न नहीं है, तो इनके ना होने को भी हम जानते हैं। तो हम तो तीनों जगह है ना, तीनों में हम लोग हैं, लेकिन ये नहीं है, एक होती है दो नहीं होती है। तो आपस में इनका व्यभिचार होता कि भेद होता आपस में, तीनों का भी आपस में भेद, एक दूसरे के साथ नहीं रहती है, तो हमारे में नहीं रहती तीनों, एक समय में एक ही रहती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो वस्तु तीनों कालों में नहीं रहती वो सत्य नहीं ना होती, समझ गए। सत्य का मतलब होता सच, जिसको हम बोलते हैं, सच्ची वस्तु नहीं होती, झूठी होती है। जो सच्ची वस्तु होती है वो रहती है सभी कालों में, आज से 10 साल पहले भी होती है, अभी भी है, तो आगे जा करके भी रहेगी, क्योंकि उसका नाश नहीं होना। लेकिन जो नहीं होती, नकली होती है, वो थोड़ी देर के लिए होती है, धीरे धीरे वो खत्म हो जाती है, नहीं ना रहती वो। तो ये तीनों जो अवस्थाएं हैं ये सत्य नहीं है। सत्य होती तो जिस समय जागृत है उस समय उनको दोनों को रहना चाहिए था, जिस समय स्वप्न है उस समय जागृत को भी रहना चाहिए, तो इसका मतलब झूठी है ना वो। इसलिए ये थोड़ी देर के लिए भासती है, उसके बाद दूसरी आ जाती है, दूसरी भासती है तो दूसरी दोनों नहीं भासती। तो जिसमें ये रहती हैं तीनों, वो तो रहता है ना, हमारे में दिखती है ना, ब्रह्म में या आत्मा में। तो आत्मा तीनों में एक जैसा है, वो बदलता ही नहीं है। इसलिए आत्मा में ये सब तीनें झूठी है ही नहीं, केवल हमारे को भ्रम से भासती है, क्योंकि हमने अपने आप को इनके साथ जोड़ रखा है। जागृत को ही हम अपना आप मानते हैं, शरीर को शरीर के साथ अटैच हो गए, इंद्रियों को अपना आप मानने लगे, प्राणों को अपना आप मानने लगे। जिस समय ये सभी इंद्रिय काम करते हैं ना, उस समय हम जागृत के साथ जुड़ जाते हैं, प्रपंच के साथ जुड़ जाते हैं, तो हमारे को अपना ब्रह्म स्वरूप भूल जाता है, तो हम अपने को ही मानने लगते हैं। जब ये जागृत चले जाती है तो हम कहाँ जुड़ जाते हैं? स्वप्न के साथ। स्वप्न में क्या चीज होती है? जो हमने दिन में चीजें देखी होती या सुनी होती है ना, उनकी स्मृति होती है स्वप्न में, और कोई स्वप्न नाम की चीज नहीं है। जो कुछ भी हम दिन में देखते हैं या सुनते हैं ना, उनकी हमारे अंदर वासना पड़ी होती है, वो विषय तो हट जाते हैं दिन वाले, लेकिन उनकी याद जो स्मृति ना, संस्कार, वो बना रहता है, वही हमारे को स्वप्न में दिखता, और कुछ नहीं होता है। स्वप्न नाम की और कोई सत्य वस्तु नहीं है। जो भी हमने देखा, इस जन्म में देखा हो या पीछे किसी जन्म में देखा हो या सुना हो, वो हमारे को दिखता है। कई बार हम कहते हैं कि आज ऐसा सुना देखा जो हमने कभी देखा ही नहीं, तो वो ऐसा नहीं कि देखा नहीं, देखा तो है, किसी पहले जन्म में देखा है, किसी पहले जन्म में उसको देखा है या सुना है, वो वस्तु हमारे को दिखने लगी। हमारा अपना ही संस्कार है जो हमारे को दिख रहा है, कौन देखता है उसको? मन जो है, मन ही अपने आप ही दिखने वाला बना हुआ, अपने आप ही देखने वाला बना हुआ है, हुआ कुछ नहीं है, मन ही दोनों काम कर रहा है। एक शरीर गंगा में स्नान कर रहा है, दूसरा बाहर खड़ा देख रहा है, तो वो कहाँ है? दोनों ही नहीं है, नहीं ना है। एक भंडारा कर रहा है, एक दक्षिणा बांट रहा है, एक खा रहा है, सब अपने आप बना हुआ, हुआ कुछ भी नहीं है। जब उठ करके देखते हैं तो कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो तीनों अवस्थाएं हैं ना, लाए नहीं आप, स्वामी जी को लाना था ना, रोज भूल जाते हैं आप लोग, उनको तो आना ही होता है ना, लेकिन भूल जाते हैं। सराहने में ला के रखे थे तब भी नहीं लाए उनको। चलो आज महाराज जी, ठीक है, के पीछे कर दें। तो ये कहते हैं कि ये जो तीन अवस्थाएं हैं ना, ये व्यभिचार है इनका आपस में, आपस में व्यभिचार का अर्थ है आपस में इनका भेद है। तीनों एक जगह नहीं रहती हैं, अलग अलग रहती हैं। एक काल में जागृत होती है और दूसरे काल में स्वप्न होती है, फिर अलग दूसरे काल में सुषुप्ति होती है। तो व्यभिचारी मिथो रजतादि ज्यों, ये रजतादि मिथो कर्तुता आपस में, आपस में व्यभिचार है, इनका व्यभिचार कर देता भेद है। भेद समझते हैं ना, भेद एक दूसरे से अलग, भेद कर देता अलग, ये अलग है वो अलग है, एक जगह रहती नहीं है, परस्पर भी इनका एक दूसरे के साथ भी भेद है और सीपी में भी नहीं रहती। जैसे सीपी में तीनों नहीं ना रहते इकट्ठे, जब चांदी होती है उस समय बॉर्डर नहीं होता, कागज नहीं होता, जिस समय कागज होता तो चांदी नहीं होती। उसी प्रकार ब्रह्म में आत्मा में जिस समय जागृत है उस समय स्वप्न नहीं है, जिस समय स्वप्न है उस समय सुषुप्ति नहीं है, जागृत नहीं है। लेकिन ऐसा हमारे को अलग अलग प्रतीत नहीं ना होता, हमारे को चक्कर तो यही पड़ा है ना, और क्या हुआ है हमारे को अलग अलग इनकी प्रतीति पता नहीं चलता कि ये तीनों अलग अलग हैं। हम तो जागृत में भी स्वप्न में रहते हैं, स्वप्न में भी जागृत में रहते हैं, हमारे को पता थोड़ी चलता है। जागते हुए हम अपने आप को मान रहे हैं लेकिन स्वप्न में चल रहे हैं। जिस दिन हम जाग जाएंगे ना तब हमारे को जागृत नाम की कोई चीज दिखेगी नहीं। जागे नहीं हम लोग लेकिन समझते हैं कि जागते हुए हैं। जिस दिन जाग जाएंगे तब ये तीनों अवस्था खत्म ही हो जाएगी, मिलेगी नहीं। तभी तो बार बार जागने के लिए महात्मा लोग या ग्रंथकार जागने का बार बार उपदेश करते हैं ना कि जाग ले हो रे मना, जाग ले हो। इसका मतलब क्या हुआ कि हम नहीं जागे हुए, नहीं तो उनको कहना ही ना पड़े। चेतना है तो चेत ले, निस दिन में प्राणी, छिन छिन औध बिहात है, फूटे घट जो पानी। चेतना है तो चेत ले, वो कहते हैं बार बार गुरु तेग बहादुर महाराज जी। लेकिन बात गुरु तेग बहादुर जी का जो उपदेश है ना वो कहाँ से शुरू होता है और कहाँ जाकर के समाप्त होता है, शुरू कहाँ से होता है गुरबाणी में, शुरू कहाँ से होता है, गुरु तेग बहादुर जी शुरू कहाँ से करते हैं अपना उपदेश। पहला शब्द गुरु महाराज जी का जो शुरू होता है वो कहते हैं साधो मन का मान त्यागो, यहां से शुरू करते हैं। समझ के बात, शुरू करने की बात देखो कहाँ से करते हैं वो, कि सबसे बड़ी बात क्या है जो अहम है, यहां से वेदांत शुरू होता है उनका। वेदांत भी जहां से चलता है कि अहम को छोड़ो और क्या है। तो गुरु तेग बहादुर जी का पहला शब्द है गौड़ी राग में साधो मन का मान त्यागो। हे साधो, हे जिज्ञासु, मन का मान त्यागो, जो तेरे मन को अहम है, मान मतलब अभिमान है, अहम है। क्योंकि माया तजी तो क्या भया जो मान तजया नहीं जाए। कबीर साहब जी भी जहां से बोलते हैं माया तजी तो क्या भया, कहते आप कहते होंगे कि हम माया छोड़ के संसार छोड़ के आ गए घर से, तो क्या हुआ। हम किसी को कहते हैं ना कि आप यदि बन गए, मतलब कोई किसी पद पर बैठ जाता है तो दूसरा आदमी जो स्वतंत्र होता कहता क्या हुआ, यदि आप गांव के सरपंच बन गए तो क्या हो गया, आपके खुदा थोड़ी हो गए। कहते ना हम लोग कि आपको प्रधान बना दिया तो क्या आप कोई खुदा थोड़ी हो गए। तो कबीर साहब कहते हैं कि माया छोड़ दी तो क्या हो गया, आप अपने को क्या मानते हैं कि माया छोड़ दी हमने। माया का मतलब पैसे ही थोड़ी होता है, घर छोड़ दिया, पैसे छोड़ दिए तो माया छोड़ गई क्या। माया तो आप साथ में लेकर के घूम रहे हैं। माया तजी तो क्या भया जो मान तजया नहीं जाए। वो कहते हैं कि माया जो आपने छोड़ दी ना तो फिर क्या हुआ। एक बार एक महापुरुष कथा कर रहे थे, बहुत बड़े महापुरुष थे, उसी उनके सुनने वालों में एक और बड़े महापुरुष बैठे थे, तो उन्होंने ये पंक्ति बोली कोई ऐसो भक्त जो माया ते रहित। ये गुरु अर्जन गुरु ग्रंथ साहब जी की पंक्ति है, कोई ऐसो रे भक्त जो माया ते रहित। तो उठ के खड़े हो गए जो बैठे थे, कहते मैं हूं, कहते यही तो है जो आप बोलते हैं। जब उन्होंने बोला ना कि कोई ऐसो रे भक्त जो माया तरह, तो कोई है ऐसा भक्त जिसने माया छोड़ी हो तो उठ के खड़े हो गए जो बैठे थे, कहते मैं, कहते यही तो संत जी बोल रहा है, माया तो बोल रही है, जो आप कहते मैं हूँ यही तो है, जो रहत होता माया से वो ऐसा बोलता ही नहीं है। तो इसलिए कबीर जी कहते हैं कि अजय अभी बात बनी नहीं, माया तजी तो क्या भया, जो आपको माया छोड़ने का अभिमान है वो तो आपने छोड़ा ही नहीं। आप कहते कि मैंने माया छोड़ दी, मैं घर को छोड़ के आया हूं, कहते ये जो आपको अहम बैठा है छोड़ने का, ये कौन छोड़ेगा। त्याग का भी त्याग वो होता है ना, त्याग करने का भी जो है ना, अहम ना हो कि मैंने त्याग किया, मैं छोड़ के आ गया, मैं घर से आ गया, या मैं इतना दान कर दिया, मैंने इतने लोगों को घर बना के दे दिए, इतने लोगों को मैं राशन बांटता हूँ। यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं, यहाँ ही देखो राशन बांटते बांटने आते हैं तो फोटो कैसे खींचते हैं, किसको दिखाते हैं वो फोटो, ऐसे राशन बांटा जाता है क्या, यहीं बांटते तो तीन कैमरे वाले साथ में लेके आते हैं, उनको क्या है, दिखाएंगे लोगों के इतने लोगों को हमने राशन बांटा है। तो माया तजी दी, माया तजी तो क्या भया, मान है ना लोगों को दिखाने का कि मैंने ये काम किया। तो जो लोग दान करने वाले होते हैं ना, जो दान करते हैं असली रूप में, वो किसी को बताते नहीं है, वो कहते हैं गुप्त दान लिखो, गुप्त दान भी उनका लिखते हैं लोग, तो वो ऐसा भी नहीं दिखाते, वो तो किसी को पता ही नहीं चलता क्या हुआ, वो चोरी दे करके जो वस्तु देनी होती है ना किसी को बताते नहीं है, चोरी दे करके चले जाते हैं। इसलिए माया तजी तो क्या भया, जो मान तजया नहीं जाए, यदि मान नहीं छोड़ा, अहम नहीं छोड़ा, तो माया नहीं छोड़ी आपने, माया को तो आपने पकड़ रखा है। क्यों ऐसा हुआ, कहते मान मुनि मुनवर गले, मान सबै को खाए, मान मुनि मुनवर गले, मुनियों के जो मुनिवर थे ना वो मान में गल गए, मुनिवर जो मुनियों के श्रेष्ठ जो ऋषि महात्मा थे ना, वो भी मान के अहम में ही गल गए, भाव समाप्त हो गए, उनको भी नहीं पता चला, उनको ये नहीं पता चला कि हम कहाँ जा रहे हैं, मान के अंदर ही। बड़े बड़े मुनियों की बात आती है, बड़े बड़े मुनियों के प्रसंग आते हैं कि बाकी बात छोड़ने पर भी उनको जब उनके अहम को ठेस लगती है ना, एकदम फिर आग की तरह हो जाते हैं। किसी को भी ले लो आप, दुर्वासा आते हैं और आते हैं, पहले मतलब क्या बोलते हैं उनको, विश्वामित्र जी हैं, इतने लोग हैं कि जब अहम को ठेस लगती ना, उनको क्या बोला था वशिष्ठ जी ने, आओ राज ऋषि, इतनी कहा था ब्रह्म ऋषि ने कहा तो, आओ राज ऋषि कहा तो, इतने से क्या हुआ, महाराज उनके अहम को ठेस लगी थी ना, उन्होंने बोला आओ राज ऋषि, तो 100 पुत्र मार दिया वशिष्ठ जी का इतनी बात पर। हर रोज कहते थे ऋषि वशिष्ठ जी, हर रोज कहते आओ राज ऋषि, तो एक पुत्र मार देते थे, 100 पुत्र मार दिया विश्वामित्र जी ने उनका। जब पता चला असलियत का, तो जब जिस दिन उन्होंने बोला कि आओ ब्रह्म ऋषि, तो कहते आप ये बात पहले ही कह देते, पहले इतना बोल देते ब्रह्म ऋषि तो मैं इतना काम ना करता, 100 पुत्र मार दिया उनका, केवल उनको ब्रह्म ऋषि ने कहा। तो क्या था महाराज जी, अहम था ना, मान तजया नहीं जाए, और उनको क्या था, मेरे को ऐसा को नहीं बोला, तो ब्रह्म ऋषि कहलाने का क्या था, अहम था ना कि मेरे को ब्रह्म ऋषि कहो, तो मतलब अंदर की तो चाह थी, तो यदि मान ना ना हो तो फिर कोई गाली निकाले तब भी नहीं कुछ होता, जब कोई माया डाल देता है ना माला तब भी नहीं फूलता, तो जब कोई वो कहते हैं जूतों का हार डाल दे तब भी फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता ना फर्क, तो जिसको फर्क पड़ता है उसको थोड़ा सा कोई स्टेज पे दो अक्षर बोल देता तो फूल जाता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है, जब उसको कोई स्टेज पे समय नहीं देता फिर उसको पूछो क्या हालत होती है उसकी, कोई भी हो हम ही हो भले, जब हमारे कोई कोई हमारा नाम बोलता है तो हम फूल जाते हैं कि बस सभी लोगों को पता चल गया कि ये कथावाचक है, तो जिस दिन समय नहीं मिलता तो हम लोग उसकी तरफ क्या देखते हैं कि ना उसको कभी बुलाएंगे ना इसके कभी जाएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, मान तजया नहीं जाए, क्योंकि उसने बड़े बड़े ऋषियों को गाल दिया मान ने। इसलिए गुरु तेग बहादुर जी महाराज शुरू यहां से करते हैं कि साधो मन का मान त्यागो, पहले सबसे जो अहम है उसको छोड़ो, तब फिर जा करके अंत में कहते हैं अंत में राम नाम और मैं गए हो, समाप्ति में कहते हैं जा करके, शुरू यहां से करते हैं साधो मन का मान त्यागो, अब समाप्ति कहाँ करते हैं, राम नाम और मैं गए हो जाके सम नहीं कोय, शुरू उन्होंने कहां से किया समाप्ति कहां की है, राम नाम और मैं गए हो जाके सम नहीं कोय, जेह संकट जेह सिमरत संकट मिटे दर्श त्योहार होए। तो सबसे पहले गुरु महाराज जी का उपदेश है कि मन का जो मान है ना उसको त्यागो, साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत गुरजन की, जो काम है क्रोध है और संगत दुर्जन की, दुर्जन किसको कहते हैं, जो जिनको हम क्या कह देते हैं नास्तिक लोग बेमुख लोग, उनकी संगत छोड़ दो। तो संगत किसकी करो, साधु की संगत रहो, जौ की भूसी खाओ, ये कहा है साधु की संगत रहो, क्योंकि साधु की संगत करने से आपके संस्कार बदल जाएंगे, वैसे ही हो जाएंगे धीरे धीरे। तो यदि आप जिसकी संगत करेंगे वैसा ही आप बन जाएंगे, चोर के साथ रहेंगे जो चोरी करनी अवश्य सीख जाएंगे, चोर आपको भले चोरी करने के लिए सिखाए ना तब भी आप सीख जाएंगे, जिसके पास भी हम बैठते हैं ना उसके जैसे हो जाते हैं। तो जब काम क्रोध दुर्जन संगत की ताते अहन सपागो, सुख दुख जोनों सम कर जाने और मान अपमाना, ये सब जो है तब होगा जब आप अहम को छोड़ेंगे। मेन काम है अहम का, अहम को छोड़ने से ये जितना कुछ हमारे को भासता है ना, ये अहम की अटैचमेंट से भासता है। ये यहाँ जो बात कर रहे हैं ना कि जो तीन अवस्थाएं हैं जिनका परस में व्यभिचार है, भेद वाली हैं, एक दूसरे के साथ रहती नहीं है, और हमारे में तीनों क्यों भास रही हैं, हम लोगों को थोड़ी पता चलता कि जिस समय जागृत है उसमें स्वप्न नहीं है, क्योंकि हम तो जागृत में भी स्वप्न में घूम रहे हैं, हमारे पास तो तीनों ही हैं, जागृत में भी तीनों ही हमारे पास है, हमारे को दिख रही है तीनों ही। जिस समय हम इस समय हम अपने आप को जागता हुआ मानते हैं कि नहीं, इस समय हम कहते हैं हम जागते हैं, अभी आपको कोई आपके अंदर कल्पना शुरू हो जाए ना, कोई कल्पना बैठे बैठे यहां बैठे सत्संग में बैठे हुए आपको ध्यान आ जाए ना, किसी मित्र का किसी घटना का ध्यान आ जाए जो आपसे पहले आपके साथ कभी घटना हुई थी, तो उसी की तरफ आप चले जाएंगे तो जहां बैठे बैठे आप स्वप्न में चले जाते हैं, आपको पूरा दिखने लगता है उसने मेरे को गाली निकाली, उसके साथ हम वहां गए यहां गए वहां बैठे, तो क्या स्वप्न हुआ कि नहीं। तीनों अवस्थाएं आपको एक ही समय में भासने लगती हैं, जागृत में आप बैठे हैं और यहां ही स्वप्न शुरू हो जाता है, यहां बैठे बैठे पूरा दृश्य आपके सामने आ जाता है, हम वहां गए थे वहां ऐसा हुआ वहां ऐसा हुआ ऐसा हुआ, और इतना हो जाते हैं, इतना आप कई बार आपको बैठे बैठे ऐसा होता है कि बैठे बैठे आप सुषुप्ति में चले जाते हैं, होता कि नहीं, बैठे बैठे भी सुषुप्ति में चले जाते हैं, खराटे शुरू हो जाते हैं, कई बार ऐसा होता कि नहीं। तो बैठे बैठे सुषुप्ति में पहुंच गए लेकिन पता थोड़ी चलता है कि हमारी अवस्था बदल रही है, जागृत आ रही है या जागृत में स्वप्न आ रहा है, स्वप्न में सुषुप्ति शुरू हो रही है, पता ही नहीं चलता। ये तो जब थोड़ा सा विचार करेंगे ना, अपने अहम को छोड़ेंगे, थोड़ा सा अंदर को जाएंगे, इससे हटेंगे इससे हटेंगे, आँखों से कान से नाक से या विषयों से हमारी थोड़ी सी गिलानी होगी, हमारे को दोष लगेगा विषयों में, तभी थोड़ा सा पता चलता है। ये कहते हैं कि व्यभिचारी मृथो रजतादि ज्यो, इन्हीं की मृथो व्यावृत्ति ज्यो त्यों, उसी प्रकार जिस प्रकार ये कहते हैं कि इन्हीं की ये जो सीपी में कागज चांदी और अभ्रक है ना, जैसे ये आपस में परस्पर इनका भेद है और सीपी के साथ भी इनकी व्यावृत्ति है, आपस में भी भेद है और सीपी के साथ भी इनका भेद है, सीपी में अभाव है इनका, व्यावृत्ति का अर्थ होता अभाव, व्यविचार अर्थ होता भेद। आपस में इनका भेद है और सीपी में इनका तीनों का परस्पर अभाव है, एक रहती है तो दूसरी नहीं रहती। त्यों, त्यों कहते हैं उसी प्रकार, इतना ही शब्द कहा त्यों। जैसे इनका आपस में भेद ना, उसी प्रकार तीन अवस्थाओं का आपस में भेद है और ब्रह्म में अभाव है। इनका व्यावृत्ति है ब्रह्म में, ब्रह्म में तीनें नहीं रहती है। ब्रह्म शब्द ही बहुत गुंजलदार बना हुआ है और कोई बात ही नहीं है। ब्रह्म शब्द ही गुंजलदार बना हुआ है, समझ में आता ही नहीं है क्या हो रहा है। कहीं से भी आप उठा लो ना, कोई भी शब्द उठा लो, गुरबाणी का उठा लो, रामायण का उठा लो, बात वहीं आकर के फंस जाती है। जब ब्रह्म शब्द आ जाता है, आत्मा शब्द आ जाता है, तो उसमें नहीं पता चलता कि ब्रह्म नाम की क्या चीज है, क्या ब्रह्म है। कोई ब्रह्म किसी को पकड़ के दिखाने वाली वस्तु तो है नहीं, कोई कैसे दिखाएगा। शब्दों से ही बताता जाएगा, शब्द जितने आपको कोई बताता जाएगा उतने हम उलझते जाते हैं। जितने शब्द कोई ज़्यादा अपने अपने को बताता जाएगा उतना उलझ जाते हैं, बात कुछ भी नहीं निकलती उसमें से। शब्दों का जाल जो है ना हमारे ऊपर आता जाता है, जाल में हम उलझते जाते हैं। शब्द जालम महारण्यम, ये विवेक चूड़ामणि में कहा कि शब्दों का जाल तो बहुत बड़ा जंगल है, जितना ज़्यादा शब्द जाल में उलझे जाएंगे उतना जंगल में घुस जाएंगे, तो आपको रास्ता ही नहीं मिलेगा कहाँ जाना है बाहर। बात और टूक मात्र भी वही कहते हैं, बोल देते हैं जैसे बुल्ले शाह ने कुछ बहुत बड़ी बात नहीं कही, कहा इधरों पुटना दे इधर लौना, बात इतनी कहनी किसी ग्रंथकार ने भी और क्या कहना है। लेकिन हमारे को जैसे कैसे समझ में आए, वो इधर की युवतियाँ उधर की युवतियाँ इधर की युवतियाँ उधर की युवतियाँ ज़्यादा खोल खोल के बताते हैं कि समझ में आ जाए। अब ये कहते हैं सुगति सूत्रवत अनुग एक जो, अब ये तो बात हो गई कि ये आपस में इनका व्यभिचार है और सीपी में इनका अभाव है, तो सीपी का क्या है इनके साथ संबंध है कोई? जो सीपी है उसका कोई संबंध इनके साथ है? जहाँ कहते हैं जैसे माला में सूत्र होता है ना, माला में सूत्र कहते हैं धागा होता है, या सुगति, सुगति का अर्थ सीपी होता, तो कहते सीपी का क्या है इनके साथ? इनका तो सीपी में अभाव है, सीपी से भेद है, जो सीपी है ना उसका क्या है? तो ये कहते हैं कि सुगति सूत्रवत अनुग एक जो, जो सुगति है ना सीपी है ना, वो अनुसूत है, व्यापक है, तीनों में है वो। जिस समय चांदी भासती है तब भी सीपी है, उस समय कागज नहीं है, अभ्रक भी नहीं है। जिस समय कागज है उस समय भी सीपी है, सीपी एक ही है तीनों में, लेकिन वो अलग अलग हैं, एक रहती है तो दूसरी नहीं रहती। इसका मतलब वह परिच्छिन्न है, परिच्छिन्न का अर्थ होता है कि थोड़े थोड़े काल में भासने वाली है, वो छोटी है, वो व्यापकता नहीं है। व्यापक कहते हैं जो ज्यादा जगह रहता है, जैसे घड़ा होता ना, तो घड़ा परिच्छिन्न है, पृथ्वी व्यापक है, सभी घड़ों में पृथ्वी है, सभी घड़ों में पृथ्वी है। उसी प्रकार जैसे कहते घट घट में हर जू बस है, घट घट में, घट घट कहते हृदय, हर एक हृदय में, हर एक हृदय में प्रभु परमात्मा है। लेकिन सबको थोड़ी पता चलता, हम लोगों को नहीं पता चलता कि हम तो कहते हम यहाँ हैं, उस कमरे में नहीं है, तो हम इसी को लेकर के ऐसा कहते हैं ना, शरीर को लेकर के कहते हैं ना कि हम यहाँ पर हैं वहाँ पर नहीं है। यदि हम अपने आप को आत्मा रूप में देखते तो हम कहाँ नहीं है, सब जगह हैं कि नहीं? यदि हम और जगह नहीं ना होते तो शरीर लेकर के जहाँ जाते हैं ना शरीर, तो फिर हम वहाँ जा कर के बोल भी नहीं सकते। शरीर तो जड़ है, ये तो मुर्दा शरीर जो हो जाता है, जब मुर्दा हो जाता है तो उसको कहीं भी उठा के ले जाओ बोलेगा वो। यदि हम इतना ही शरीर होते ना तो मुर्दे को उठा के कहीं भी ले जाओ, दूसरी जगह जाके बोलता क्यों नहीं है, बोलना चाहिए ना उसको। तो इसको लेकर के तो हम कहते हैं कि हम यहाँ नहीं, हम वहाँ आएंगे आपके पास, दूसरे को कहते हैं कि हम आपके पास आएंगे, किसको लेकर के ऐसा बोलते हैं कि आएंगे? शरीर को लेकर के कहते हैं ना, तो मुर्दे को ले जाओ दूसरी जगह, वो जाकर जहाँ बोलेगा कि मैं आपके पास आऊँगा, कभी नहीं बोलता मुर्दा कि मैं आपके पास आऊँगा। इसका मतलब है कि हमने इस शरीर को मान करके व्यवहार करते हैं जितना करते हैं। हम वहाँ हैं पहले से, जाते हम किसी के पास नहीं हैं। जैसे आप कहते हैं ना ट्रेन में बैठे हुए, हम लोग ट्रेन में बैठे हुए क्या क्या बातें करते हैं। यहाँ से जाना हो ना दिल्ली, तो हम कहते हैं कि जलंधर आने वाला है, उसको बोलते हैं जलंधर आ गया। जलंधर कहाँ से आया? जलंधर आया कि हम गए हैं वहाँ? तो हम क्या कहते हैं? जलंधर आ गया, उतर जाओ। ब्यास आ गया, उतर जाओ। जब पूछते हैं कि आने वाला है 2 घंटे में, आ जाएगा, इधर को आ जाएगा कि हम वहाँ जाएंगे? दिल्ली आने वाली है 4 घंटे में, तो दिल्ली तो कहीं नहीं, दिल्ली वहाँ की वहाँ ही है, दिल्ली वहाँ की वहाँ ही है। हम लोग कहते हैं कि हम दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में कहते दिल्ली आ रही है, कहते दिल्ली आ रही है थोड़ी देर में, यहाँ से कहते हम दिल्ली जा रहे हैं। तो क्या तमाशा है ये, ना कोई जाता है ना आता है। भगवान कहते हैं भी ना जायते ना मरियते वा कदाचन नायम भूत्वा भवितवा न भूया, कहते हैं आत्मा ना जाता है ना आता है, ना पहले नाश था ना अभी नाश है ना आगे नाश होगा, कोई ऐसा नहीं है। ना हन्ने ते हन्ने माने शरीरे, शरीर के मरने पर भी इसको कोई मार नहीं सकता। तो हम तो शरीर जहाँ जाता वहाँ ही आत्मा को लेकर के जाते हैं। हम ये थोड़ी कहते हैं कि हमारा शरीर दिल्ली जा रहा है, हम कहते हैं हम जा रहे हैं दिल्ली। शरीर कौन कहता है मेरा शरीर जा रहा है दिल्ली? कहते हैं हम जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस शरीर के साथ ही हैं, अलग अलग हमने अपने आप को किसी नहीं माना। जो महात्मा होते हैं तत्ववेत्ता लोग, उनसे आप पूछो कि आपका नाम क्या है, तो कहते हैं इस शरीर का नाम है, स्वामी जी महाराज कहेंगे इस शरीर का नाम, अपना नाम लेकर के बोलेंगे। जब मेरे मैं तो नहीं बोलता हूँ, मैं तो इसी शरीर के साथ ही हूँ। जो तत्ववेता लोग होते हैं वो कहते हैं कि इस शरीर का नाम ये है, वो अपना नहीं कहते कि मेरा नाम ये है, वो कहेंगे इस शरीर के माता पिता आए हैं। आम ही बोलते हैं महात्मा कि इस शरीर के माता पिता आए हैं। उनका कभी माता पिता आ जाए ना वो, तो कोई पूछता है ये कौन है, कहते इस शरीर के माता पिता हैं। तो है भी इस शरीर के माता पिता है ना, हमारे थोड़ी हैं, इस शरीर के माता पिता हैं महात्मा लोगों को हमने देखा है। महाराज जो कहते हैं इस शरीर के ये भाई लगते हैं, मेरे भाई नहीं हैं, कहते इस शरीर के भाई हैं, क्योंकि ये एक माता के उधर से निकले हैं, उनको सहोदर बोलते हैं। सह उदरा इति सहोदरा, भाई को सहोदर भी कहते हैं ना, सह उदर सह मतलब इकट्ठे उधर से आए हैं। तो इसलिए कहते हैं कि ये सब देखना आयो जगत तमाशा, तमाशा जो यही तमाशा है, हम लोगों को पता नहीं चलता। दूसरे का तो तमाशा बना लेते हैं, अपना तमाशा समझ में नहीं आता कि हम हर रोज तमाशा करके दिखा रहे हैं लोगों को। यहाँ से कहते हैं कि हमने दिल्ली जाना है और रास्ते में कहते दिल्ली आ रही है, तो तमाशा ही तो है और क्या है, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता। जगत का तमाशा तो हम देखते हैं कि जो कोई थोड़ी देर के लिए तमाशा करने आता ना उसको देखते हैं, लेकिन यदि पूरा तमाशा ही देख लें तो कुछ भी नहीं बचता ना। कहते हैं गुरु गोविंद सिंह महाराज जी, सकल काल का किया तमाशा, ये तो काल ने, ये तो प्रभु ने तमाशा किया हुआ है। सकल संपूर्ण, एक को नहीं कहते वो कि थोड़ा सा जो बाजीगर दिखा रहा वही तमाशा नहीं है, वो कहते हैं सकल काल का किया तमाशा, संपूर्ण जो आपको दिख रखा है ये काल का तमाशा है, इसमें हुआ कुछ नहीं है। एक जगह महाराज जी इतनी सुंदर बात कहते हैं, उसके ऊपर हमने इतना चिंतन किया, एक पंक्ति महाराज जी ने गुरु गोविंद सिंह जी ने बोली है, कई ज्ञानियों से हम पूछ चुके हैं लेकिन हमारी तृप्ति नहीं होती। महाराज जी कई ज्ञानियों से हम उस पंक्ति का उत्तर पूछ चुके हैं लेकिन हमारी तसली नहीं हो रही। एक पंक्ति गुरु महाराज जी ने बचित्र नाटक में लिखी है, वो कहते हैं कि और सुकाल सभी वस काल के, एक ही काल अकाल सदा है। ये पंक्ति लिखी महाराज जी ने, और सुकाल सभी वस काल के, एक ही काल अकाल सदा है। अब क्या इसका अर्थ लगाएंगे? वो कहते हैं कि जितने वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल और सुकाल, जो तीन काल हैं और सुकाल सभी वस काल के, वो तीनों काल जो हैं वो काल के वस हैं, उनका भी काल करने वाला कोई है, उसमें मृत्यु भी आ जाती है। जो वर्तमान की मृत्यु है, जो भूत की मृत्यु है, जो भविष्य की मृत्यु है, सभी वस काल के, वो सभी काल के वस हैं। एक ही काल अकाल सदा है, एक ऐसा काल है वो सदैव अकाल है। तो ये पंक्तियां कहां समझ में आती है? वो काल भी है और अकाल भी है। देखो उसकी बात करते हैं महाराज जी के, महाकाल रखवार हमारो। महाकाल किसका नाम है? महाकालेश्वर का मंदिर भी है उज्जैन में, तो महाकाल कौन हुआ? वो शिव जी, जो मंदिर वाला शिव जी, उसको कहेंगे महाकाल? नहीं कह सकते। नाम तो उसका महाकाल है कि नहीं? महाकालेश्वर, लेकिन वो कहाँ महाकाल है? आज प्रलय हो जाएगी तो बचेगा शिवलिंग? उसको महाकाल क्यों कहते हैं? उसको महाकालेश्वर के दर्शन करने जाना है। महाराज जी कहते हैं, महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चिंतन है पेव। कहते महादेव को लोग शिव कहते हैं, शिव ही कहते हैं ना। महादेव को कहत सदा शिव, उसको सदा शिव कहते हैं महादेव को, लेकिन निरंकार का चिंतन है भेव। जो निरंकार है, जो निराकार है ना, उसका चिंतन है भेव, उसका भेद जो नहीं जानता, वो महादेव को शिव कहता है। तो जहां पर लोग इतना उलझ जाते हैं, इतना उलझ जाते हैं कि जहां पर डांग सोटा चल जाता है, झगड़ा हो जाता है। जब किसी को कहेंगे ना, जो शिव का पुजारी है ना, जो शिव का उपासक, उसको ये बात कहेंगे तो डांग उठा लेगा, अपनी सोटी उठा लेगा। तुम हमारे इष्ट देव के ऊपर प्रहार करते हो कि वो शिव नहीं है, यही कहेंगे ना, वो शिव नहीं है। आप कहते हो शिव नहीं है, हम कहते हैं। एक बार बात चली थी वहाँ, गुरबाणी की बात कहीं चली थी, हमने कहा कि जब तक उसमें इकार लगा रहता है ना, इकार, तो उसको शिव कहते हैं। इकार हटा दो तो शव हो जाता है, शव होता है कि नहीं? इकार हटा दो ऊपर से तो शव हो जाता है। जब तक उसमें इकार लगी रहेगी तब तक वो निरंकार नहीं है, निरंकार नहीं होगा। शिव तो उसको कह सकते हैं, तो निरंकार थका क्या, क्या है निरंकार? हो तब बनेगा जब शव हो जाएगा। इकार क्या है? वो पार्वती है, वो माया है, वो इकार जो है वो माया है, इसलिए वो शिव है, उसके सहित शिव है वो। जब उसको हटा दोगे ना, जब माया से अलग हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? अच्छा हो जाएगा, करेगा नहीं ना कुछ, मुर्दा कुछ नहीं करता ना। शव कहते हैं मुर्दे को। जब तक उसमें इकार लगे रहेगी तो शिव रहेगा, शिव रहेगा तो सब कुछ करेगा, संसार के काम करेगा, संहार करेगा संसार का। जब उसमें से इकार हट जाएगी ना, उससे माया अलग हो जाएगी, तो शव हो जाएगा। शव का मतलब निराकार हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, कुछ करेगा नहीं। तो कहते हैं कि महादेव को कहत सदा शिव, यही तो महाराज कह रहे हैं ना कि महादेव को लोग शिव कहते हैं, क्योंकि शिव है ना वो, उसके साथ में पार्वती है, तभी वो शिव है ना। लेकिन निरंकार का चिंतन है देव, यदि वो ही शिव होता तो उनको नीचे वाली पंक्ति ना बोलनी पड़ती, यदि वो निराकार होता ना तो उनको नीचे वाली पंक्ति ना बोलनी पड़ती। दूसरी पंक्ति में कहते कि निरंकार का जो भेव नहीं ना जानते, जो निराकार को नहीं जानते, वो सगुण को कहते हैं कि ये जो महादेव है ना, ये सगुण है, तो वो भी उसका ही रूप है, लेकिन सगुण रूप है ना, निराकार नहीं है। तो लोग कहते उसी में फंसे हुए हैं, वो तो कर्मकांडियों की बात करते हैं, जो कर्मकांड वाले हैं, कि वो उसी को मान के वहीं बैठे हैं। ये नहीं कि शिव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, हम लोग भी उनको मानते हैं, ऐसी बात नहीं है, सब लोग मानते हैं, सगुण की भी पूजा है, लेकिन यहाँ पर चिंतन करने की बात करते हैं कि महादेव को कहत सदाशिव, निरंकार का चिंतन है भेव। क्योंकि ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव न पावत भेदा। कहते मूड लोग, जो मूर्ख लोग हैं ना, ताका मूड उचारत भेदा, जो मूढ़ लोग हैं उसका भेद लोगों को बताते हैं, किसका जाको भेव न पावत वेदा, किसका व्याख्यान कर कर लोगों को बताते हैं कि वो ऐसा है, ब्रह्म ऐसा है, जाको भेव न पावत वेदा, जिसका भेद जो है वेद भी नहीं जानता, नेति नेति कह करके वेद जहां पर चुप हो जाता उसका व्याख्यान कर करके मूर्ख लोग लोगों को बताते हैं, हमारे जैसे। वही आ जाएगी ना बात कि उसका भेद जिसका भेद वेद भी नहीं जानता, ताको कर पाहन अनुमानत, वहां मूढ़ का से भेद ना जानत, उसको पाहन करके मानते हैं। यहां पर लोग कहते हैं कि महाराज जी ने जहां पर खंडन किया है, खंडन किसी का नहीं किया है, खंडन नहीं कहीं नहीं किया महाराज जी ने, जहां पर ज्ञान कांड की बात चल रही है, कर्म कांड की बात नहीं चल रही, ना उपासना की बात चल रही है, यहां पर ज्ञान कांड की बात चलती है, लोग उल्टा समझ जाते हैं, जिनके समझ में नहीं आता।
और भी आ रही
है, हाँ जी,
वेद न जानत भेद,
हाँ जी,
अवतार न जानत अंत,
पार ब्रह्म अंत, ये भी बात है, ये भी गुरु ग्रंथ साहब की पंक्ति है, ब्रह्मे नहीं जाने भेद, ब्रह्मे नहीं जाने भेद, ब्रह्म नहीं जानता, अवतार ना जाने अंत, अवतार जो लोग हैं वो भी अंत नहीं जानते, अंत न पावत देव सबे मोना, क्या कहते हैं, अंत न पावत देव सबे मोना, देवता भी नहीं जानते और सभी जो मुनि लोग हैं ना मुनि वो भी नहीं जानते, अंत न पावत देव सबे मुन, इंद्र महाशिव योग करी, इंद्र और महादेव बड़े बड़े जो योगी हैं, कहते वो सबसे बड़े योगी शिव हैं, उनसे बड़ा कोई योगी नहीं है, 5000 साल उनकी समाधि लगी रहती है, उनसे बड़ा कोई योगी होगा, लेकिन कहते नहीं, खोज थके थब ही खुजिया, खोज थके सब ही खुजिया, सुर हार परे हर हाथ ना आवे, सब कहते थक गए उसको खोज खोज के पर हाथ में नहीं आया, वेद कतेब ना भेद लख्यो, किसी ने भी नहीं जान पाया उसको, कोई भी नहीं जान पाया। तो कहते हैं कि इंद्र महाशिव योग करी, फोन वेद बिरंच विचार रहे हो, वेद बिरंच कहते हैं ब्रह्मा को, बिरंची ब्रह्मा, वो कहते इतना वेद का विचार किया उन्होंने, वेद ब्रंच विचार रहे हो, हर जाप ना छाड्यो एक घड़ी भी उन्होंने प्रभु का परमेत्मा जाप नहीं छोड़ा। मथुरा जन को प्रभु दीन दयाल है, संगत सृष्ट निहाल करी, रामदास गुरु जग तारण को गुर ज्योत अर्जुन माहे धरी, गुरु रामदास ऐसे हैं जिनको ब्रह्मा भी नहीं जान पाए, जिनको मतलब खोजते खोजते देवते भी नहीं जान पाए, ऐसे गुरु रामदास जी ने अपनी ज्योति गुरु अर्जन देव जी में रखी है। तो वहां पर सामने बैठे हुए गुरु अर्जन देव जी को ये बात भट्ट कह रहे हैं, सामने बैठे हैं उनके सामने बैठे स्तुति कर रहे हैं कि गुरु अर्जन देव जी आप ऐसे हैं, उनके लिए कह रहे हैं, कोई ये नहीं कि सामने नहीं है, सामने गुरु अर्जन देव जी के बैठे कह रहे हैं, क्या कहते हैं, सत युग तय माण्यो चलो बल बावन भायो, गुरु अर्जन देव जी को सामने बैठ के भट्ट कहते हैं, सत युग तय माण्यो चलो बल बावन भायो, आपने ही सत युग में बावन रूप होकर के बलि को छला है, त्रेते तय माण्यो राम रघुवंश कहायो, त्रेता में आपने राम बन के क्या किया, रावण को मारा, द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो, द्वापर में आपने कंस को कृतार्थ किया, कहते हैं वो क्या बात कहते हैं देख लो, कहते हैं द्वापर में आपने कृष्ण बन के कंस को मारा नहीं कृतार्थ किया, कृतार्थ कर तो क्या होता है, मुक्त किया है आपने, मुक्त, कालजुग प्रमाण नानक गुरु अंगद अमर कहायो, वही हैं आप जो आप बावन थे, राम थे, कृष्ण थे, कलयुग में आपने गुरु नानक बने हैं, अंगद बने हैं, गुरु अमरदास बने हैं। यहाँ पर पता चलता है ना तत्व चिंतक लोग कैसे होते हैं, हम लोग तो झगड़ते हैं ना थोड़ी थोड़ी बात पर, तो ये राम का उपासक है, ये कृष्ण का उपासक है, हम इसको मानते हैं, हम उसको मानते हैं, वो कौन है लोग, कौन भट्ट, भट्ट कौन थे वो लोग जो ये बात कह रहे, वो कौन थे? सुना कभी आपने? जो भट्ट लोग थे वो कौन थे? जिन्होंने ये सवैये लिखे है ना, उनको भट्ट कहते जो किसी की स्तुति करते हैं, गाते हैं ना लोग, हमारे पास भी आते हैं कभी कभी गाने वाले, जो मांगने वाले भट्ट होते हैं, हैं भाटड़े। तो भट्ट कौन थे वो जो ये बात कह रहे हैं? एक बार भगवान बैकुंठ में सभी लोग आए, तो चारों वेद भी आए वहाँ बैकुंठ में, लेकिन भगवान को देख कर के, भगवान आए जब, सभी लोग बैठे थे, भगवान आए तो उठ के खड़े नहीं हुए, सब लोग खड़े होते ना जब कोई बड़ा आता है हमारा, तो भगवान आए कि तो सब देवता लोग उठ के खड़े हो गए, लेकिन वेद खड़े नहीं हुए। उनको अहम था कि हमारे से बड़ा कौन है, इन्हीं को तो हम ही बताते हैं भाई, ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है, ये वो है, खड़े नहीं हुए। तो उनको साफ दे दिया भगवान ने कि तुमने शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम गिर जाओ, नीचे चले जाओ। श्राप दे दिया उनको, ब्रह्मा में नहीं खड़ा हुआ, ब्रह्मा को भी श्राप दे दिया, तुम भी जाओ नीचे गिर जाओ। तब उन्होंने पश्चाताप किया कि ये तो बहुत गड़बड़ हो गया काम। फिर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हमारे को इसका उपाय बताओ, श्राप तो अब आपका टाल नहीं सकता, लेकिन इसका उपाय। तब उन्होंने कहा था उनको कि अब आपको कलयुग में जब गुरु नानक, मतलब उन्होंने कहा हम नानक रूप में जब आएंगे तब आपका उद्धार होगा, जब आप इसी मुख से आकर के प्रार्थना करके स्तुति करोगे ना तब हमारा आपका उद्धार होगा। फिर एक वेद ने चार चार रूप धारण किए, चार चार भट्ट का रूप एक वेद बना, तो कितने हो गए? चार चौके 16, तो एक ब्रह्मा जी 17 भट्ट हुए, 17 भट्ट जिनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहब में है, वो 17 भट्ट कौन थे? 16 वेद, 17वें ब्रह्मा। उन्होंने ये सवैये लिखे हैं, उनको कहा था आपका उद्धार तभी होगा जब आप आकर के शरण में पढ़ के स्तुति करेंगे। तब फिर वो लोग घूमते घूमते काशी थे, काशी में उतार लिया था उन लोगों ने, काशी में सभी ने, वो भट्ट काशी के थे, काशी में ब्रह्मा जी कौन भट्ट के नाम से भी नहीं, ब्रह्मा कौन थे? ब्रह्मा का भी बीच में नाम आया, भट्ट के नाम अलग अलग थे ना, ये हरबंश है, ये कल है, ये फल है, सब भट्ट थे ना। तो भिक्खा नाम था ब्रह्मा का, भिक्खा, भिक्खा नाम था उनका, आया ना सवैयों में, भिक्खे के ऐसा कहते हैं, भिक्खा ब्रह्मा थे। तो जब उन्होंने आकर के स्तुति की यहाँ पर, वो लोग कहते हैं कि सतयुग तय माण्यो छो बल बावन भायो त्रेते तय माण्यो राम रघुवंश कहायो, ये जो वेदों ने उतार लिया भट्टों का, वो लोग कहते हैं। उन्होंने आकर के यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी के समक्ष बैठ करके स्तुति की है अमृतसर में, वो वेदों के अवतार थे। उन्होंने महाराज जी ये सवैये लिखे हैं, है आए हैं हाँ, तो इसलिए मिलो मिलो। तो ये उन लोगों ने आकर के प्रार्थना की, अंतना पावत देव समय बुन इंद्र महाशिव जोग करी, फुन वेद विरंच विचार रहे हो हर जापना छो एक करी। उन लोगों ने आकर के स्तुति की। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब भगवान की महिमा को वेद नहीं समझ पाते, दूसरा क्या समझ पाएगा? हम लोगों की तो बात ही क्या है, जब वेदों को भी धोखा हो गया, उनको भी साफ मिल गया, उनको नीचे आना पड़ा। तो यहाँ आकर के उन्होंने स्तुति की है अमृतसर में वेदों ने, वो महाराज आम लोगों को थोड़ी मालूम है, आम लोगों को ये कथा मालूम नहीं है कि वो 17 भट्ट कौन थे, 16 जो वेदों ने, एक ने वेद ने चार चार रूप धारण किए और 17वें जो है ब्रह्मा,
ये कुर्बानी में है।
हाँ ये मतलब भूमिका जो इसकी भूमिका है ना, ये महात्मा लोग बताते हैं, ये आपके सत्तों वाली गली वाले जो महात्मा है ना, उन्होंने लिखी है ये भूमिका, उन्होंने लिखी है ये भूमिका अपनी पोथी में, उन्होंने लिखी है कि ये ब्रह्मा जो ब्रह्मा और ये वेद थे, ये किस किस का कौन कौन अवतार है, ये उन्होंने लिखा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग इस तमाशे को समझ नहीं पा रहे, कौन किसको, कौन शिव है, कौन ब्रह्मा है, कौन विष्णु है, ये तो हमारे को मालूम ही नहीं है। हम उसको शिव को इसलिए महाराज को लिखना पड़ रहा कि महादेव को कहत सदा से निरंकार का चिंत न है भेवा, किसी को पता ही नहीं महादेव को लोग शिव कहते हैं, वो शिव नहीं है, शिव थोड़ी है वो, शिव तो निराकार है, निराकार हाँ वो सगुण रूप का शिव है, शिव तो वो भी है, वो भी है शिव, लेकिन सगुण रूप में है, उसको भी शिव कहते हैं, शिव कहते हैं उसको भी। लेकिन मैंने अभी कभी पहले भी आपको बताया था कि एक फोटो कई बार बनी होती है शिव जी की,
कभी आप उसमें झगड़ते हैं?
हाँ नहीं, एक फोटो महाराज जी बनी होती है शिव जी की, उसके देवी उसके ऊपर चढ़ी होती है, देखा आपने, उसको नीचे दबा के ऊपर चढ़ी होती है, वो कैसे हो रहा है? वहां पर शव बना लिया उसको, शव बना के ऊपर बैठ गई, शव हो गया कि नहीं, ऊपर बैठ गई उसकी वो शक्ति, उसमें से निकल गई है। जब इकार जैसे कहते ना, वो उसमें आया ना, गुर ईश्वर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई, उसमें से ई कहते हैं, जो ई है ना, ई माई, वो ई कहते जो है वो पार्वती है, ई तो शिव में जो ई है वो क्या है, वो पार्वती का सूचक है, जब उसको हटा देंगे तो शाप हो जाएगा।
तो वो बड़ी हुई इसका मतलब?
नहीं, बड़ी नहीं हुई, बड़ी नहीं हुई, मतलब ये होता है कि जो ब्रह्म है ना वो माया से युक्त होता है तो सृष्टि की रचना करता है।
माया क्या है?
माया क्या है? माया तो अनिर्वचनीय है, माया तो अनिर्वचनीय है।
कभी कहेंगे ना अगर कुछ है तो गड़बड़ हो जाएगी।
नहीं,
यही झगड़ा है,
यही झगड़ा है, माया के युक्त होकर के, एका माई युक्त व्याई, पहले मैंने आपको बताया था एका माई युक्त व्याई,
इसका क्या
है? इसका महाराज जी आपको बताते हैं, एका माई युक्त व्याई तीन चेले प्रमाण, लोग कहते हैं एक माया ने तीन चेले दिए हैं, ऐसा नहीं अर्थ इसका,
ब्रह्मा विष्णु महेश्वर उनको ही कहते हैं,
उनको तो कहते हैं,
चाबी
मेरे को नहीं है चाबी उसके पास, उनको तो कहते हैं, लेकिन वो किसने पैदा किए हैं?
वो माई ने कहते ना कि
माई कौन है?
माई बस माई,
यही तो बात है महाभारत, यहाँ
माया कहते हैं,
हाँ
माया को ईश्वर से छोटा कहते हैं।
यहाँ पर जो बात है ना महाराज जी, माई, माई नाम किसका है, माई नाम किसका है?
अंग्रेजी में तो मेरा कहते
हैं,
अंग्रेजी में मेरा कहते
हैं, अंग्रेजी में कहते हैं, लेकिन पंजाबी में माई नाम किसका होता है? हमारी जो माता होती है उसको हम माई बोल देते हैं, ये माइयाँ आई हैं, है ना, माई बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पंक्ति में माई शब्द है, ये माया का सूचक नहीं है।
किसका है?
कहते हैं मायाम तू प्रकृति विद्यात माइनम तू महेश्वरम, ये श्रुति है ना, श्वेता श्वेतोपनिषद की है।
इसका अर्थ क्या है?
उसका अर्थ पता क्या है? मायाम तू प्रकृति विद्यात, जो माया है उसको प्रकृति कहते हैं, प्रकृति,
फिर प्रश्न पैदा होता है प्रकृति
किसको, हाँ प्रकृति किसको कहते हैं? प्रधान को कहते हैं, प्रधान किसको कहते हैं? शक्ति को कहते हैं, शक्ति को, शक्ति मानो शक्ति, पार्वती दुर्गा जो भी बोल दो उसको,
फिर कहेंगे
शक्ति को बोलते,
शक्ति बड़ी है कि शक्तिमान बड़ा,
यही तो बात अभी आगे की बोलो ना, आगे कहते हैं मायाम तू प्रकृति विद्यात माइनम तू महेश्वरम, जो महेश्वर है ना, जो ईश्वर है उसको माई कहते हैं, माइनम 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 शब्द है ना, माइनम माइनम का बना है माई, एक वचन में प्रथमा विभक्ति के एक वचन में माई, अभी बता रहा हूँ ना, माई कहते हैं जो माया वाला है उसको माई कहते हैं।
अच्छा, यहाँ कहते हैं जो पैसे वाला,
हाँ वही बात है, जैसे धनी कहते हैं ना, जहाँ पैसे वाले को धनी कहते हैं, माया वाले को माई कहते हैं, माया को माई नहीं कहते वहाँ इस पंक्ति में,
वाले को
माया वाले को माई कहते हैं, तो यहाँ पर कहते हैं एका माई, माया नहीं माया वाला, माया युक्त, ये अर्थ निकलेगा ना अब,
तो जिसके पास माया है,
हाँ
तो वो बड़ा है कि माई बड़ी है, जिसने उसको बड़ा किया है?
नहीं, बड़ा माई ने उसको बड़ा कहाँ किया,
माया के बगैर तो, बगैर माया के हो गया, शक्तिहीन हो गया,
शक्तिहीन हो
गया, रह गया ना।
हाँ व्यवहार में तो ऐसा ही लगता है,
व्यवहार में,
व्यवहार में तो ऐसा ही लगता है,
वो तो कोई परमार्थ में जाएगा तो
व्यवहार में तो ऐसा ही है कि जिसके पास माया है वो बड़ा है, लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कौन बड़ा?
माया बड़ियाई।
कौन बड़ा? माया बड़ियाई, सो बड़ा जिन राम ले बलाई, वो कहते हैं माया वाला बड़ा नहीं, जिनके बल्ले दिन जिनके पल्ले धन वसे तिनका नाव फकीर, फकीर किसको कहते हैं? यहाँ पर जो गुरु महाराज ने फकीर शब्द कहा है,
फकीर का फकीर में महाराज बताते थे, जिसमें चार शब्द हैं उसको फकीर कहते हैं।
अच्छा,
ये उर्दू का है ना, काफ ये
फकीर, अच्छा
चारों के अर्थ किए उन्होंने।
अच्छा अच्छा,
फोन करेंगे, टाइम बहुत हो गया है।
हाँ हाँ, बाद में करेंगे। तो एका माई का अर्थ पता महाराज जी, माई का अर्थ है माया वाला, वो जो माया सबल जिसको हम बोलते हैं, माया युक्त जब हुआ ना, जो निराकार निर्गुण था ना, जो माया युक्त हुआ तो तीन चेले प्रवाण, जब वो माया युक्त हुआ तो तीन रूपों में हो गया, पहले निराकार था। एका माई का अर्थ है माया वाला ईश्वर, वो व्याई, जब वो व्याया गया, व्याई का मतलब होता है हमारी गाय व्याई, हमारी भैंस व्याई, तो प्रसूता हुई है, प्रसूता हुई, उसने बच्चे दिए हैं, सुई है वो, उस माई वाला था ना, जब उसने बच्चे दिए तीन, क्योंकि माया युक्त होकर के उस तीन रूपों में हो गया वो, फिर आगे की तो बात है ही। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम।